गौणी वृत्ति और एक मुख्य वृत्ति। जैसे पनिहारी है, मटके पर मटका धर के, उस पर मटका धर के, उस पर छोटी सी थोली रख के चल रही है, सहेलियों से बात भी कर रही। कल मेहमान आए थे, सीरा बनाया था, लेकिन मेहमान ऐसे थे बम्बई के मेहमान, थोड़ा थोड़ा खाए, मीठा नहीं खाते। हम लोग तो देहाती ठहरे, इतना सीरा खाते, उन्होंने तो इतना सा खाया। ऐसा भी कर रही, चल भी रही, फिर भी घड़े पर घड़ा, उस पे घड़ा, गिरता नहीं, क्योंकि उसकी मन की जो वृत्ति है, मुख्य वृत्ति घड़ों में है और गौणी वृत्ति से बात भी किए जा रही है और मोरा भी दिए जा रही है, यूं भी कर रही। ये तो बम्बई के ठहरे, हाँ हम बम्बई में जाएंगे तो ये तो एक कप में दूध ले आएंगे। ले बोले दूध पियो, मैंने तो कहा इतना तो मेरे कान में ही डाल दे, हाँ मैं तो अपनी भैंस धोती हूँ ना, तो मेरे बेटे को कटोरा भर के देती हूँ, मेरे पति को तो कटोरा भर के देती हूँ, फिर देती हूँ दूसरा कटोरा, और वहाँ तो कटोरी में दूध देते हैं, हाँ अपने को। फिर क्या हुआ, अरे अकेला अकेला सिरा खा गई ना, मैं तो तेरे को देती, लेकिन क्या किया, तेरा घर दूर था ना, तो मैंने सिरा भून दिया, हाँ भून रखा है, कभी कभी सर्दियां हैं, सुबह देर होगी, बच्चों को नाश्ता वास्ता बनाने में, तो भुना हुआ थोड़ा हलवा दे दूंगी और फिर दूध पिला दूंगी, लड़के भी बच्चे होंगे और अपने की भी मेहनत कम, मेहमानों ने नहीं खाया तो मैंने बिगाड़ा थोड़े, मैं कुत्तों को क्यों डालती, देसी घी का सीरा, हाँ और बात भी किए जा रही है और पानी के घड़े पर घड़ा, उस पर घड़ा लिए जा रही, नहीं गिरता वो, तब गिरता है जब मुख्य वृत्ति उसकी बात में आ जाए, तो घड़ा धड़ाक धम गिर पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा कि मन की दो वृत्तियां हैं, एक मुख्य वृत्ति, दूसरी गौणी वृत्ति। तो जिनको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, अथवा जिसका किसी जार के साथ दिल लग गया है, तो मुख्य वृत्ति अपने लवर के प्रति है और गौणी वृत्ति में अपने पति के पास रहती, ऐसा भी होता है। अथवा जो है अपने पति को परमात्मा स्वरूप मानती, तो मुख्य वृत्ति से पति के साथ रहती और गौणी वृत्ति से संसार का घर का काम करती, व्यवहार करती, सासू की सेवा करती है और पति की दादी की भी सेवा करती है। तो गौणी वृत्ति से तो सेवा करती, लेकिन मुख्य वृत्ति में यह है कि मेरे पति की दादी है, तो पति के नाते पति के पूरे परिवार की सेवा करती है। सुल्टा स्त्री गृहिणी, तो अपने उसके अंदर तो निर्णय है कि ये मेरे पति का परिवार है, तो मेरा परिवार हुआ, तो मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना, घर को ठीक ठाक रखना। तो वो जपती नहीं कि घर को ठीक ठाक रखना और मेरे पति के परिवार के हैं, मेरा कर्तव्य है सेवा करना, नहीं, उसकी मुख्य वृत्ति में ये बात जच गई है, घुस गई है। ऐसे ही हमारी मुख्य वृत्ति में ये बात जच जाए, घुस जाए कि ये संसार मेरे परमात्मा रूपी पति का अथवा मेरे परमात्मा रूपी मित्र का अथवा मेरे परमात्मा रूपी इष्ट का ये संसार घर है, और इस नाते जो भी हमारे संपर्क में आए उनकी हम भलाई करें, सेवा करें, तो हमारे पति या इष्ट या ईश्वर हम पर प्रसन्न रहेंगे और हमारा कर्तव्य है। तो फिर गौणी वृत्ति से आप व्यवहार भी करोगे, लेकिन मुख्य वृत्ति में आप ईश्वर के नाते व्यवहार कर रहे हैं। आपका देना, हंसना, खाना पीना, मिलना बिछड़ना, युद्ध करना, हनुमान जी के वृत्ति तो घुस गई। हनुमान जी के मुख्य वृत्ति में के राम जी का काम, राम काज बिन कहा विश्राम, राम जी का कार्य पूरा किए बिना मुझे विश्राम कहा। तो हनुमान जी को मुख्य वृत्ति से मुख्य लाभ हो गया, जो गौणी वृत्ति से करते थे उनको गौण लाभ हुआ। तो मन में ये शक्ति है, मुख्य वृत्ति और गौणी वृत्ति, और हम में ये शक्ति है कि कौन सी चीज मुख्य वृत्ति में भर दे, कौन सी गौणी में भर दे, किस वस्तु को कितना इम्पोर्टेंट दे, ये हम में शक्ति। और एक बार जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट हो जाता है, ऐसे मुख्य वृत्ति में एक बार सेट हो जाए तो काम बन जाएगा। जिसका लक्ष्य भोग है, वो चाहे मंदिर में रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे गिरजाघर में रहे, चाहे दिन भर बांग पुकारता रहे, लेकिन नजर डालेगा कि कौन पैसे वाला है, गिद्ध कितना भी ऊंचा उड़े लेकिन उसकी नजर तो मरे हुए कुत्ते पर मरे हुए पशु पर सीधी चली जाती। हालांकि ऊंची उठती है उसको आश्रम भी दिख सकते हैं लेकिन उसको आश्रम नहीं समझ में आएंगे, उसको तो सड़ा हुआ मरा हुआ मांस ही दिखेगा। क्योंकि गिद्ध की मुख्य वृत्ति में वो रिसर्च है क्या खावानू छे, कहां से खाने का है। कई नदियां भी दिखती है, तालाब भी दिखते, पोखरे भी दिखते, लहलाता सागर भी दिखता है, लेकिन गिद्ध को उधर मजा नहीं आएगा। गिद्ध की मुख्य वृत्ति में घुसा है मरा हुआ ढोर। ऐसे हमारी वृत्ति में मरा हुआ संसार का भोग घुसा हुआ है तो मंदिर में रहें, गिरजाघरों में रहें, मस्जिद में रहें, लेकिन वो ये औरंगजेब को मुल्लाओं ने बहका दिया कि शर्मद नाम का फकीर है, वो नमाज अदा नहीं करता। और शर्मद वास्तव में मुख्य वृत्ति से गौण वृत्ति से वेदांती संत हो गए थे। हिंदू धर्म के वेदांत को उसने समझ लिया था, वो बड़ा मस्ती में रहता था। उसका ईश्वर अल्लाह ताला कोई भोग वासना में नहीं था, कोई कर्म कांड में या दिखावे में नहीं था, उसका अल्लाह वो खुद ही हो गया था। जहां से वृत्तियां उठती है वो चैतन्य ही तो अल्लाह है, वही तो आत्मा ब्रह्म है। तो उसका तो सारा संसार ब्रह्म स्वरूप दिखता था, उसको कहां नमाज पढ़ना, कहां सिजदा करना। लेकिन जिनकी मुख्य वृत्ति में संसार का आकर्षण था और गौणी वृत्ति से भी संसार में उलझे थे, ऐसे मुल्ला मौलवी उस पर जलते थे। औरंगजेब को बहका दिया कि नमाज अदा नहीं कर रहे। उस धर्मांध ने आदेश कर दिया कि अगले जुम्मे शर्मद फकीर जुम्मा मस्जिद में नमाज अदा करेंगे दिल्ली। बुलाए गए, वो आए, इमाम ने नमाज अदा करवाना शुरू किया और खुद भी नमाज पढ़ा। शर्मद जो ही खड़ा रहा, एक दो पांच मिनट खड़ा रहा और शर्मद ठाका मार के हंसा, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा जहां पना का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, कहकर चला गया। नमाज पूरी हुई न हुई मुल्लाओं को तो क्रोध हुआ, अशांत ईर्षा होती और औरंगजेब को भी, दोनों ने क्या किया कि बस सांठ गांठ करके आदेश जारी करवा दिया कि शर्मद जहां हो उसका उसी जगह पे सिरोच्छेद कर दिया जाए, क्योंकि खुदा ताला का अपमान कर दिया। हकीकत में खुदा ताला का अपमान कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता, खुदा इतना कमजोर नहीं कि किसी एक अपने पैदा किए हुए मनुष्य के द्वारा उसका अपमान हो सके। जयराम जी की, जैसे तुम्हारे शरीर में एक रक्त के बूंद में लाखों लाखों जीवाणु हैं, तो उन जीवाणुओं के आप खुदा ताला हो गए, आप इसमें उत्पन्न हुए, आप ही में जी रहे, आप ही में वो मर रहे। तो वो बैक्टीरिया अगर आपका अपमान करे और आपका अपमान हो जाए तो आप खुदा ताला नहीं हुए उनके। जैसे तुम्हारे शरीर के बैक्टीरिया तो आपस में कुछ भी तुम्हारे लिए बोले, तुम्हारे तक उसकी तो भूम भी नहीं आती, उनका जीना मरना ये तुम्हारी गिनती में ही नहीं आता है। जब एक शरीर में करोड़ों करोड़ों जीव है, उसमें 10 5 25 जीव आपके लिए कुछ बोल दे बक ले तभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इस सृष्टि में जैसे आपके शरीर में बैक्टीरिया है, ऐसे सृष्टि में, सृष्टि के व्यापकता में, ईश्वर की व्यापकता में हम बैक्टीरिया की बराबरी के भी नहीं है। ईश्वर इतना बड़ा व्यापक है तो खुदा ताला का कोई अपमान कर नहीं सकता। लेकिन आदमी अपनी अपनी अपने अहम को, अपने वासना को, अपने बेवकूफी को खुदा के नाम से भी पूरा करना चाहते। इस्लाम खतरे में होता, अपना कुर्सी खतरे में होती, अपनी बेवकूफी खतरे में, तो इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में, ये खतरे में, इज्जत खतरे में, ये सब डाल देते। शर्मत जहां उसका सिर कटा दिया जाए, शर्मत जहां मिले उनका सिरोच्छेद हुआ तो सिर लुढ़कने लगा, मानो सिर में पूरा जीव आ गया। लुढ़कता लुढ़कता यमुना के एक तरफ बह रहा जा रहा है, दूसरे फकीर ने जान लिया कि शर्मद ब्रह्मवेता है और नाराज हुए हैं औरंगजेब के आदमियों से। औरंगजेब अगर नाराजी नाराजी में चले गए, इनका रक्त यमुना जी में पड़ा तो यमुना जी में प्रकृति का कोप हो सकता है और पूरा दिल्ली बर्बाद हो सकता है। तो उस फकीर ने शर्मद को कहा कि अज्ञानी है वो, बेवकूफ है, उनसे गलती हो गई, लेकिन आप फकीर हैं, आप क्षमा कर दें महाराज। फकीर उदार होते, दयाल होते तो वहां मुंडी शर्मद की रुक गई, उपद्रव से बच गए। अब किसी समझदार ने कहा औरंगजेब को कि शर्मद की बात में कोई सच्चाई थी, शर्मद सत्य को छुए हुए फकीर थे, हम लोगों ने शर्मद को समझने में कहीं बेवकूफी की होगी। शर्मद ने कहा कि औरंगजेब का खुदा, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, तो जहां शर्मद खड़े थे वहां खुदाई किया जाए, पैरों तले गड़ा है तो वास्तव में क्या है? खुदाई हुई तो सोने की देग निकली, माल मिलकत निकली, पैसे चांदी के रूपए, सोने की अशर्फियां। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। इमाम से पूछा कि सच बताओ, जिस समय तुम नमाज पढ़ रहे हो, जिस समय शर्मद ने ये कहा, उस समय तुम्हारा खुदा, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारी मुख्य चीज क्या थी? तुम्हारी मुख्य वृत्ति किसमें थी? महत्व बुद्धि किसमें थी? इमाम ने कहा मेरी लड़की बड़ी हो गई, उम्र लायक हुई, मैंने प्रार्थना किया कि खुदा ताला कुछ दे दे, ऐसा कुछ धन दौलत दे दे ताकि मेरी बेटी के हाथ रंगू। तो सिद्ध हो गया कि इमाम का खुदा धन दौलत था और वो धन दौलत शर्मद के पैरों तले गड़ा था। तो नमाज अदा करते समय भी हचमुच में आदमी की मुख्य वृत्ति या गौण वृत्ति भगवान में, अल्लाह में होती है, ये कहना बड़ा कठिन है। आप मंदिर में होते हुए भी आपकी मुख्य वृत्ति कहाँ है, गौण वृत्ति कहाँ है? आप गुरु के निकट होते हुए भी आपका मन कहाँ है? कोई बात छुपा कर ऐसा वैसा करके गुरु को रिझा कर अपना संसार का उल्लू सीधा करूं, ये अंदर में है तो समझो आपका मुख्य वृत्ति संसार में है। लेकिन जो भी काम करूं घर में या इधर, तो गुरु जी की कृपा पाकर मुक्त हो जाऊं, ईश्वर को पालूं, ऐसी अगर मुख्य वृत्ति है, गौण वृत्ति है, तो आप सचमुच में गुरु के पास है, गुरु के निकट है, ईश्वर में है तो ईश्वर के निकट है, ईश्वर के पास। तो हमारे मन की दो धाराएं होती है, एक मुख्य वृत्ति और दूसरी गौणी वृत्ति। तो ज्ञानी महापुरुष जब व्यवहार करते हैं तो गौणी वृत्ति से लेना देना मिलना, जैसे वो पनिहारी सब बोल रही है, उलावना भी दे रही है, लटके मटके से भी बात कर रही है, हंसी मजाक भी कर रही है आपस, फिर भी मुख्य वृत्ति उसके गढ़े में है। ऐसे ज्ञानी सब कुछ लेता देता है, फिर भी मुख्य वृत्ति अपने आत्मा के अनुभव में, गौणी वृत्ति से सब व्यवहार करते हैं। कभी कभी मुख्य वृत्ति भी जब ले आते हैं तो समाज में आनंद आनंद हो जाता है। मुख्य वृत्ति लाके जरा सा निगाह डाल देते तो सब दीवाने हो जाते, मस्ताने हो जाते, वो अपने आत्मानंद से थोड़ी वृत्ति लाके जरा सा इधर। तो अब हमारे मन की दो वृत्तियां हैं और दो प्रकार की वृत्तियां हैं, गौणी वृत्ति और मुख्य वृत्ति, और उसमें भी अनेक वृत्तियां उठती हैं। एक मन कहता है खाना खाऊं, दूसरा मन बोलता है तुमको सत्संग सुनाऊं, तीसरा मन बोलता है कि नहाने जाऊं, चौथा मन बोलता है कि घूमने जाऊं, पांचवा मन कहता है कि दूर के आए हैं। तो मन पांच नहीं है, मन की वृत्तियां पांच हुई, ऐसे हजारों हो जाती है। गौणी वृत्ति में हजारों वृत्तियां हो जाएगी, हजारों मन नहीं है। एक चैतन्य से जैसे एक सरोवर में कई लहरें उठती है, ऐसे एक चैतन्य से जो लहरें उठती रहती है उसको मन बोलते। हजारों मन भी है और एक मन भी है। पानी के रूप में देखो तो एक ही है और लहरों के रूप में देखो तो हजारों हो गया। हमारे मन में एक घंटे में 100 विचार उठे, 100 वृत्तियां उठी, एक घंटे में 100 मन हुए ऐसा मान लो, या 100 विचार उठे, उन 100 के 100 विचार के अनुसार हम काम नहीं करते। उसमें भी जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो 10 विचारों को हम नोट करते, बाकी तो विचार उठ उठ के लीन हो जाते हैं। दस में से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो काम करते, बाकी के विलय हो जाते। समझो एक घंटे में दस विचार उठ, सौ विचार उठे, उसमें के दस पर हमारा ध्यान गया, दस में से भी चुन कर दो चार, चार पर हमारा ध्यान गया, तो घंटे में चार वृत्तियां, चार पर हमने ध्यान दिया, तो बारह घंटे में अड़तालीस विचार हो गए मुख्य ध्यान देने योग्य, और तो बहुत सारे हो गए। तो एक दिन में पचास हो गए समझो, रात दिन के गिन के मुख्य मुख्य, तो आठ दिन में चार सौ हो जाएंगे क्या? नहीं, चार सौ में भी मिल के जो उसमें से भी छांट के रहे उसी की स्मृति रहेगी, उसी की इफेक्ट रहेगी और उसी काम को हम रिपीट करेंगे। तो मान लो हफ्ते में कलाक के सौ विचार उठे तो दस कलाक के हजार, उसमें भी पचास इम्पोर्टेंट, तो हफ्ते में हुए चार सौ, लेकिन हफ्ते में चार सौ विचार आपके दिमाग में इम्पोर्टेंट वाले नहीं रहेंगे, उसमें से भी छन कर पच्चीस पचास स्मृतियां रहेगी हफ्ते में। मानो हफ्ते की पचास स्मृतियां, तो महीने की दो सौ रहेगी क्या? नहीं, उसमें से भी फिर छट जाएगा। तो मान लो महीने के मुख्य मुख्य सौ वृत्तियां स्पूर्ण रहे तो बारह महीने के बारह सौ हो गए, और पचास साल जिए तो क्या पचास हजार साठ हजार विचार मुख्य रहेंगे क्या? नहीं, छन छन के जीवन में, जीवन के अनुभव से दस बीस पचास विचार रहेंगे, उसमें भी छन छन के जीवन भर जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया और मुख्य मन में रखा, मुख्य वृत्ति में रखा, वही मरते समय स्मृति आएगी। और जैसी मति ऐसी गति, भरत ने राजपाट छोड़ दिया लेकिन हिरण की स्मृति मुख्य हो गई तो दूसरा जन्म हिरण का मिला। फिर साथ साथ में भगवान में भी मुख्य वृत्ति थी लेकिन उस समय के लिए मरते समय हिरण में मुख्य वृत्ति आ गई, तो दूसरी मुख्य वृत्ति छुपी थी भगवान में, तो हिरण के शरीर में आते हुए भी भगवान की भक्ति करता था हिरण पशु, और हिरण का शरीर शांत हुआ तो फिर किसी ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और वहां वो स्मृति बनी रही कि अजनाब खंड का राज्य छोड़ा, सब छोड़ा लेकिन हिरण में मन लग गया, वृत्ति हिरण में चली गई, तो इतना दुख भोगना पड़ा तो अब मैं अपनी वृत्ति इधर उधर नहीं भटकाऊंगा, तो ब्रह्म में लगा दिया, हजा बाजा सोहम स्वरूप में लगा दिया, तो चलते फिरते सब उसी में मुख्य वृत्ति और गौणी वृत्ति। तो घर वालों ने कहा ये तो किसी काम का नहीं है, रुका सुखा देते थे वो खा लेते थे, क्योंकि उसको खाने पीने में वृत्ति नहीं रखी, ईश्वर में लगा दी, ओढ़ने बिछाने का जैसा आता वहीं पड़ जाते थे, तो लोगों की नजर से वो मूर्ख जैसे लगे, जड़ जैसे लगे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत रखा, लेकिन अंदर से बड़े चेतन। पिताजी गुजर गए, भाई ने कहा अब तुम मुफ्त का खाते हो, खेत में भी ठीक से काम नहीं करते हो, जहां पानी मोड़ना है वहां पानी खोल देते हो, और जहां पानी खोलना है वहां तुम बंद कर देते हो, जहां मिट्टी खोदना है वहां तुम टेकरा कर देते हो, और जहां मिट्टी ले जाना है वहां से तुम उठा लेते हो, उल्टा करते हो, अब तो जाओ तुम साधु हो जाओ, घूमो फिरो, मौज करो, जाओ। चतुर आदमी कोई संसार में फंसाने वाले लोग फंसाते हैं, जो दूसरों के काम में आएगा उसी को लोग घर में भी चाहें। तो जड़ भरत ईश्वर के काम में आने लगे, स्वार्थियों का स्वार्थ पूरा नहीं होने लगा तो उन्होंने छुट्टी दे दी। वही जड़ भरत विचरण करते करते किसी जंगल में गुजरे तो जंगली राजा को यज्ञ पूर्ति के लिए बलि देनी थी, तो उस समय मनुष्य की बलि देते थे, बोले जाओ किसी को पकड़ के लाओ, और पकड़ के आए जड़ भरत को, ने लाया विलाया, जिलेबी खिलाई, हार पहनाया, मयान में से तलवार खींच के उसका सिरोच्छेद करना था। अब जड़ भरत अंदर से तो पूरे ज्ञानी थे, भारत का नाम भारत नहीं पड़ा था, अजनाब खंड था, और भरत का इतना राज्य व्यवस्था सुंदर थी कि उसी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे भरत कितने बुद्धिमान रहे होंगे, तो जानते थे कि अभी ये सिरोच्छेद करने के लिए लाए, लेकिन जड़ भरत को उसका भय नहीं था क्योंकि शरीर में ही वृत्ति नहीं थी, गौणी वृत्ति शरीर में होना चाहिए वो भी नहीं थी, मुख्य वृत्ति और गौणी वृत्ति दोनों ईश्वर में थी, अजन्म आत्मा में मस्त थे, जो होगा होगा, गड़ा टूटेगा तो टूटेगा, आकाश तो जो का त्यों है, शरीर तो गड़ा है, शरीर के अंदर रहने वाला चिदाकाश में हूँ। तो जो मयान में से तलवार निकाल कर उनका सिरोच्छेद करने की तैयारी की यजमान ने, त्यों काली प्रकट हुई कि ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जिसकी मुख्य और गौणी वृत्ति ब्रह्म में है, जहां से जिस ब्रह्म की सत्ता से काली काली है, अम्बा अम्बा है, शिव शिव है, राम राम है ब्रह्म, जिस ब्रह्म परमात्मा की सत्ता, उसी में तो ये एक रूप हुए। इनकी हत्या मेरे लिए हो, मेरे आगे बलि होगी तो मैं कहां रहूंगी। तो काली उस मूर्ति से प्रकट हुई प्रकाश पुंज में और कोपित होकर नृत्य करने लगी, और जिस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या करने वाले ने हाथ उठाया था उसके हाथ से तलवार लेके उसी का सिर छेद कर दिया, गेंद की नहीं उछालने लगी, और उसी की बलि दे दी उसने काली। तो ज्ञानी का अपराध अक्षम्य है, ज्ञानी भले माफ कर ले, नहीं तो ज्ञानी के लिए कुछ भी थोड़ा सोचो तो प्रकृति रूपी काली घर बैठे अशांति कर देगी। और ज्ञानी महापुरुष के लिए अहोभाव से विचारो तो घर बैठे आनंद शांति और आध्यात्मिकता के मार्ग खुल जाते हैं। किसी को अशांत और दुखी करना है तो ज्ञानवान के प्रति उसको अश्रद्धा पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो, अपने आप वो बर्बाद हो जाएगा, अशांत और दुखी हो जाएगा। अब किसी को सुखी करना हो तो ज्ञानवान के प्रति उसकी श्रद्धा बना दो, बस वो देर सबेर सुखी आनंदित होने लगेगा। वस्तुएं मिले तब आनंदित नहीं, ज्ञानी के प्रति श्रद्धा होते ही आनंद शुरू हो जाएगा, वस्तुएं अपने आप खींच के आने लग जाएगी। तो हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति, और ऐसा भी शक्तिशाली है कि कौन सी वृत्ति को कितना महत्व देना, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो जो काम बार बार किया जाता है उसकी आदत बन जाती है, उसी में रस भी आता है। बार बार भांग खाते, बार बार बीड़ी पीते, बार बार अफीम खाते, बार बार जुगाड़ करते, तो ये बद्दे काम में भी उनको थोड़ा रस आता है तभी तो करते। जैसे बार बार भगवत कथा सुने, बार बार भगवान जप करे, बार बार भगवान नाम जपे, बार बार भगवान की महत्ता सुने जाने, तो मुख्य वृत्ति तो भगवान में होगी, गौणी वृत्ति भी कहीं आसक्त नहीं होगी। दोनों हाथ में लड्डू, कबीर जी उसी में कहते, ताना बुनते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी कबीर जी का अनुभव, उठत बैठत ओई उठाने कत कबीर हम उसी ठिकाने। तब एक मन हो रहा है कि भोजन करने जाऊं, दूसरा मन कह रहा है कि तुमको सत्संग सुनाऊं, अब तुम ही बताओ क्या करूं। दोनों हो गया, जो सुना उसका थोड़ा विचार करो, और संधि का समय है, थोड़े प्राणायाम करके संध्या करो, अभी जो सुना है विचार करो। निश्चय स्व में होता है। आप इम्पोर्टेंट किसको देते हो? ईश्वर को देते हो तो आपका मंगल हो जाएगा, और इम्पोर्टेंस संसार को देते हो तो हजार मालाएं घुमाओ फिर भी उतना रस नहीं आएगा। अब धीरे धीरे माला घुमा के जब आप अपने तरफ से महत्व बुद्धि ईश्वर को दोगे, गुरु के ज्ञान को दोगे, तभी सीधा कल्याण के तरफ ऊपर बढ़ेगा। ईश्वर को पाना कठिन है ऐसी बात नहीं, आप मुख्य वृत्ति कहां लगाए, आपने महत्व बुद्धि कहां रखी। वल्लभाचार्य ने महत्व बुद्धि श्रीनाथ जी में रखी, और श्रीनाथ जी में इतना प्रेम बढ़ गया, मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति दोनों लगी कि ठाकुर जी मेरे हाथ से दूध पी लो एक बार, और ठाकुर जी ने हाथ लंबा किया और दूध लिए के पीने लगे। मीरा की मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति दोनों लग गई, विष अमृत हो जाता था। जगन्नाथ जी का मंदिर तो अभी भी है भगवान, और पहले भी थे, लेकिन गौरांग की मुख्य वृत्ति जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में मूर्ति में ही लगी, इतना भाव दृढ़ हो गया कि उनका शरीर जगन्नाथ जी में विलय हो गया। मीरा सा शरीर, तुकाराम सा शरीर ईश्वर में चले गए, ऐसा सुनाई देता। तो ये भावना का रास्ता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान हो गया तो फिर वो सह शरीर मूर्ति में चला जाए, यहाँ वहीं कुछ चला जाए, ऐसा नहीं होता। ज्ञान हो गया तो ज्ञानी का मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति दोनों आकाश रूप ब्रह्म में व्यापक हो जाएगी। शरीर जैसे अज्ञानी का जीता मरता है, ऐसा ज्ञानी का भी होगा। ज्ञानी के शरीर को भी जलाओ तो वैसे ही खाक बनेगा, और अज्ञानी के जलाओ तो भी खाक बनेगा, लेकिन ज्ञानी का अनुभव तो अमर हो जाता है। कलकत्ते में काली माता का मंदिर अभी भी है, जिसकी पूजा करके राम कृष्ण काली को प्रकट करते थे, बातचीत करते थे, और काली राम कृष्ण के हाथ से फूल ले लेती थी, राम कृष्ण के सूंघे हुए फूल सुगंधी वाले हैं कि नहीं ऐसा करके सूंघते थे, सुगंधी वाले रखते थे, और वो इतना मुख्य वृत्ति गौणी वृत्ति भावमय होती तो काली जी प्रकट होकर उनके हाथ से फूल लेते थे। रामकृष्ण का दिया हुआ भोजन काली स्वीकार करती थी, लेकिन काली की मूर्ति तो अभी भी है, और पुजारी क्यों नहीं करते, और रामकृष्ण के पहले वाले पुजारियों से काली ने क्यों नहीं लिया। काली माता का मंदिर तो वही का वही, ऐसे ही यहाँ कांकरोली में उदयपुर के पास श्रीनाथ जी का मंदिर तो वही का वही, वल्लभाचार्य के हाथ से तो मूर्ति ने तो दूध पिया। नरो नाम की लड़की थी आहिर की, उसने सोचा कि जब इनके हाथ से ठाकुर जी ने पिया तो मेरे हाथ से क्यों नहीं, वो भी लग गई, तो उसका अभ्यास और भाव बढ़ गया तो उसके हाथ से भी ठाकुर जी ने प्याला दूध का ले लिया। लेकिन उन्हीं दिनों में दामोदर लाल जी नाम का पुजारी रहता था उस मंदिर का मेन पुजारी, हंसा नाम की लड़की आती थी दर्शन करने के, तो हंसा नाम की लड़की तो ठाकुर जी का दर्शन करती थी और वो पुजारी हंसा का दर्शन करती, उसकी मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति हंसा में लग गई, आपस में लवर लवरी बन गए और वो हंसा को लेके भाग गया, और ठाकुर जी के मुखमंडल का हीरा भी चोरी हो गया, तो ठाकुर जी तो वही के वही है, बोले वो चोरी करके चला गया तो ठाकुर जी ने उसको अंधा क्यों कर नहीं किया। ठाकुर जी ये छोटे मोटे तुम्हारे शरीर में कोई बैक्टीरिया इधर उधर करता है तो क्या तुम उन बैक्टीरिया की आंखें निकालने भागते हो क्या। जयराम जी की, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपनी मुख्य वृत्ति से आप जो करते हैं तो ईश्वर के नजीक का करते तो गुरु और ईश्वर के नजीक महसूस करते आप अपने को, आपकी मुख्य वृत्ति अगौणी वृत्ति ईश्वर से या संसार से नजीक है तो फिर गुरु तो पास में है, प्लेन में भी तो गुरु हो बैठते, लेकिन जो पहचानते हैं और जिनको गुरु के प्रति आदर है वो तो दर्शन करके वहीं गदगद हो जाते, बाकी के लोग इमली खाते रहते कि ये कैसे पैसेंजर है कि एक बाबा के पीछे पड़े, क्योंकि उनकी मुख्य वृत्ति और गौणी वृत्ति में संसार और विकार और किस और वाइन और वो एयरपोर्ट पे, अमेरिका के एयरपोर्ट पे जब मेरे को लोग आते हैं विदाई देने को तो मैं कुर्सी भी बैठता हूँ, तो लोग वहां एयरपोर्ट पे तो कुर्सियां खूब होती है सबके बैठने के लिए होती, लेकिन कोई नहीं बैठता, नीचे बैठते तो उनको देखकर दूसरे लोग दंग रह जाते, उनके ही फोटो निकालते कि ये कैसे लोग हैं, आश्चर्यकारक हमारा भी फोटो लेते उनका भी लेते हैं अपनी मेमोरी के लिए, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जगत सारा ये मनोमय जगत है, जिसका जैसा मन की वृत्ति और धारणा होती है ऐसा जगत दिखता है, लेकिन वास्तव में जगत क्या है वो तो जो भगवान को और भगवान को पाए हुए ज्ञानियों को दिखता है वही वास्तविक में। तो ईश्वर की दृष्टि के साथ गुरु की दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि मिला दे, ये आंखें नहीं अंदर की समझ, गुरु की समझ के साथ अपनी समझ मिला दे, इसीलिए सत्संग होता है, शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि ईश्वर की समझ के साथ अपनी समझ मिला दे। हम लोग क्या करते कि हमारी समझ के अनुसार गुरु करे, हमारी समझ के साथ के अनुसार ईश्वर करे, हे भगवान मेरे को एक बेटा दे देना। अब भगवान को मानो पता ही नहीं कि हमको क्या चाहिए, हम जब पैदा हुए माँ के गोद में आए तुमको कैसा दूध चाहिए वो भी भगवान को पता है, तभी तो ऐसा बनाया, हे भगवान मेरे को बेटा दे देना, और एक दो साल के अंदर दे देना, तो समय टाइम पीरियड का भी ईश्वर को अक्ल नहीं है, हमने दे दी अक्ल, दो साल के अंदर एक बेटा दे देना, और बेटा ऐसा देना खूबसूरत हो, अक्ल वाला हो, माता पिता की सेवा करे, भगवान मेरा नाम करे, ऐसा बेटा हो। तो मानो भगवान कुछ जानता ही नहीं, सारी अक्ल हम दे डालते उसको। तो हमने संसार में मुख्य और गौण वृत्ति रखी और भगवान के साथ केवल हम जैसे एक नौकर से काम लेना चाहते ऐसा व्यवहार करते, लो हमने तुमको ये चढ़ावा दे, नौकर को पगार देते हैं, एजेंट को कमीशन देते, भगवान को प्रसाद दिया, गुरु को रुपया पैसा प्रसाद दे दिया, हमारा ये कर दो हमारा वो कर दो। इसीलिए आस्तिक लोग लाखों हैं, फिर भी आस्तिकता का जो परम फल होना चाहिए वो तो उन्हीं के हृदय में प्रकट होता है जो मुख्यता ईश्वर को देते, ईश्वर ज्ञान के साथ अपने को एक करते, गुरु के अनुभव के साथ अपने को एक करते। गुरु दीक्षा लेते ने तो नारियल देने की परंपरा क्यों है? विश्वामित्र ने अपना तपोबल ऐसा बढ़ाया कि अपनी संकल्प से चीजें बनाने लगे, जैसे गेहूं है, चावल है, वो ब्रह्मा जी के संकल्प से सृष्टि से बना, लेकिन ये मक्का है, बाजरा है, वो विश्वामित्र ने बनाया। ऐसे ही विश्वामित्र सोचते थे कि जेर से, गर्भ से बच्चे पैदा होते, इतना पीड़ा सहते, जैसे पेड़ों से और उनके पुत्र पौत्र पैदा होते हैं, पेड़ों से जैसे संतान पैदा होती है, ऐसे मनुष्यों को भी पेड़ों से पैदा करो। तो विश्वामित्र ने तपस्या की और ऐसे धारणा किया, तो मनुष्य का डिजाइन बनाते बनाते उसकी खोपड़ी का मॉडल बनाई है नारियल। आगे फिर उनकी तपस्या काम नहीं कर सकी, तो वही नारियल मनुष्य का मस्तक का प्रतीक है। नारियल में तीन होते ना टिपके, दो आंखें, तीसरा वो। नारियल अर्पण करने के पीछे वो होता है कि हम अपनी वृत्ति से, अपने विचारों से, अपने खोपड़े से तो कई जन्मों तक ठोकर खाते आ रहे हैं, अब ये खोपड़े अपने विचार आपको हम अर्पण करते। अथवा दूसरा अर्थ ये लगा सकते कि देवी देवता के पास जाते जाओ, वहां नारियल फोड़ो, नारियल फोड़ो, मतलब जिस खोपड़े में कल्पना है मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति संसार की है, उस खोपड़े को फोड़ो। अब हे देव, तुम्हारी वृत्ति भरेंगे खोपड़े में, ये भाव रहता है।